आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूनान के अपने हममनसब किरियाकोस मित्सोताकिस से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए भारत यूनान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तई अपने अज़्म को दोहराया। भारत ने दुनिया से दहशतगर्दी की सभी शक्लों से निमटने की कोशिशों में तेजी लाने और उन्हें मुस्तहकम करने की अपील की है। इंतखाबी कमीशन ने गुज़श्ता 6 साल के दौरान कोई इंतखाब न लड़ने पर 474 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया है। आसामी गुलकार जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इंतकाल हो गया है। और एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में अबूधाबी में भारत और ओमान के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूनान के अपने हम मनसब किरियाकोस मित्सोताकिस से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए भारत यूनान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तई अपने अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, जहाजरानी, दिफा, सलामती, कनेक्टिविटी और अवाम से अवाम के राब्तों जैसे शोबों में दोतरफा ताल्लुकात में हो रही पेशरफ्त का खैर मकदम किया। साथ ही दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर अपने नजरियात का तबादला भी किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मित्सोताकिस ने बाहमी तौर पर फायदा मंद भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहदे की जल्द तश्कील और साल 2026 में भारत की मेजबानी में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की कामयाबी के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वो समुद्र से स्मृति की तकरीब में शिरकत होंगे। जनाब मोदी भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से जायद के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी अवाम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की मुश्तरका खुशहाली, पायदारियत और कौमी मजबूती में बहरी मईशत मरकजी हैसियत रखती है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सागरमाला, गहरे समंदर के मिशन और हरित सागर रहनुमा खतूत जैसे इकदाम बहरी वसाइल को फरोग देते हैं और बिरादरियों को बाइख्तियार बनाते हुए जिद्दत तराजी के साथ साथ आलमी बहरी हुक्मरानी में भारत की क्यादत को तकवीत बख्शते हैं। भारत ने आलमी बिरादरी से हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने की कोशिशों को तेज और मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि दुनिया दहशतगर्दों और पाकिस्तानी स्टेट और फौज के दरमियान ताल्लुक से बाखबर है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के ताजा वीडियोस पर एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के वाकयात इसे और नुमाया करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुल्कों को सरहद पार की दहशतगर्दी और हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए। जनाब जायसवाल ने कहा कि कसीर रुखी फॉर्म से चाहे वो ब्रिक्स, एससीओ या कोई और हो, आने वाले किसी भी दस्तावेज में बैनुल अक्वामी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के तई जबरदस्त हिमायत होती है और इसमें सरहद पार की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है।
We all have to fight cross-border terrorism.
हमें हर स्तर पर आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ना होगा, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई शिखर सम्मेलन हो या कहीं और। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए समर्थन मिल रहा है। हमें आतंकवाद के सभी प्रारूपों का डटकर सामना करना होगा।
In all its forms and manifestations.
जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की की क्यादत में एक नई उबूरी सरकार की तश्कील का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहतरमा कार्की से गर्मजोशी के साथ बातचीत की है और अमन और इस्तेहकाम की बहाली में उनकी कोशिशों को भारत की मुकम्मल हिमायत के अहद का इयादा किया है। तर्जुमान ने कहा कि एक करीबी पड़ोसी, एक जमहूरी मुल्क और लंबे अरसे से तरक्याती शराकतदार के तौर पर भारत दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि दिफाई अफवाज ने ऑपरेशन सितूर के जरिए दुश्मन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की ताकत का मुजाहरा किया है। وزیر موصوف نے نئی دلی میں 1965 کی بھارت پاک جنگ کے 60 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک یادگاری تقریب کے دوران سابق فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی افواج کے تال میل اور جرت نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت کے لیے جیت محض اتفاق نہیں بلکہ عادت بن چکی ہے۔
کوئی بھی یدھ کیول بیٹل فیلڈ میں ہی نہیں لڑا جاتا بلکہ یدھ میں جو وجے ملتی ہے ایک ساموہک سنکلپ کا وہ پرینام ہوتی ہے۔ 1965 یہ اس کٹھن سمے میں جب چاروں اور انشچتا اور چنوتیاں تھیں، تب شری لال بہادر شاستری جی کی درڑھ اچھا شکتی والے نیتتو نے دیش میں ان چنوتیوں کا سامنا کیا۔ شاستری جی نے اس دور میں نہ کیول نرنائک راجنیتک نیتتو دیا بلکہ پورے دیش کے منوبل کو اونچائی تک انہوں نے پہنچایا۔ انہوں نے ایک ایسا نعرہ دیا جو آج بھی ہمارے ہردے میں گونجتا ہے، جائے جوان جائے کسان۔
جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حکومت تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فوجیوں کو وسائل کی کمی محسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے سخت محنت کی ہے، اپنی تقدیر خود سماری ہے اور اپنا مستقبل خود تشکیل دیا ہے۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہر برسر ملازمت فوجی سابق فوجیوں اور شہیدوں کے کنبوں کا وقار اور فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے آج کہا ہے کہ جنگ انا کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے اور دنیا کو بھارت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک تنازع کو کس طرح شروع اور ختم کیا جاتا ہے۔ نئی دلی میں ایئر فورس ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آپریشن سندور اس وقت مکمل کر لیا گیا جب بھارت نے دہشت گردی کے خلاف اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ اسرائیل اور روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل نے کہا کہ جنگیں جاری رہنے سے بہت نقصان ہوتا ہے اور اس سے ممالک بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے اور شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کی طرف ایک اہم اقدام کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال یوم آزادی کے اپنے خطاب میں اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ٹیکس کی نئی شرحیں پیر سے نافذ ہوں گی۔ آج ہم آٹو موبائل صنعت پر ان اصلاحات کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیں گے۔
جی ایس ٹی کونسل نے 3 ستمبر کو اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا، جس میں آٹو موبائل شعبے میں اہم ٹیکس کٹوتی سے شہریوں کو بڑی راحت دی گئی۔ حکومت نے موٹر کاروں اور موٹر بائک کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے کل پرزوں پر ٹیکس کم کر کے 18% کر دیا، جو پہلے 28% تھا۔ نئے ٹیکس ڈھانچے کے مطابق ان بسوں پر جی ایس ٹی کی شرح 28% سے کم کر کے 18% کر دی گئی ہے جس میں 10 لوگ سوار ہو سکتے ہیں۔ اس سے مناسب قیمتوں پر ٹکٹ دستیاب ہوگی اور لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب راغب ہوں گے۔ اسی طرح 1800 cc تک کے ٹریکٹروں پر جی ایس ٹی کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے، جس سے گھریلو بازار اور برآمدات دونوں شعبوں میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات نے عام آدمی پر مالی بوجھ کم کر دیا ہے، جس سے مانگ میں اضافہ ہوگا، گاڑیوں کی زیادہ فروخت ہوگی اور ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ روحن اور سمیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
سیوا اور سشاسن یعنی خدمت عامہ اور اچھی حکمرانی کے منتر سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار یکسر تبدیلی اور ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ آج کی اس خصوصی سیریز سیوا پرو میں ہم اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت مودی سرکار نے کس طرح ہر بیٹی کی عزت و وقار، تحفظ اور تعلیم کو یقینی بنایا ہے۔
ہریانہ میں پانی پت کا مقام تاریخی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں ہونے والی 3 جنگوں نے تاریخ کو متاثر کیا ہے۔ ایک بار پھر 22 جنوری 2015 کو اسی مقام پر اس وقت تاریخ رقم کی گئی جب وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی بیٹیوں کے لیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ایک نئی اسکیم شروع کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا،
ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بہو تو ہمیں پڑھی لکھی ملے، لیکن بیٹی کو پڑھانا ہے تو 50 بار سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ نیا کب تک چلے گا؟ یہ ہماری سوچ میں یہ دوگلاپن کب تک چلے گا؟ اگر بہو پڑھی لکھی چاہتے ہیں तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती।
भारतीय सरकार के इस अहम इकदाम का मकसद बच्चों के जिंसी तनासुब में गिरावट से निमटना, जिंसी इस्तेहसाल को खत्म करना और बच्चियों के तहफ्फुज़ और तालीम को फरोग देना है। भारत सरकार के समाजी इकदाम में से ये सबसे मुअस्सर स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भारत के 2047 तक विकसित भारत बनने के विजन और ख्वातीन की तरक्की से ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की की तरफ आलमी रुझान के ऐन मुताबिक है। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाली हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की जागीरती धीमन ने कहा,
10th क्लास में मैंने 91% मार्क्स हासिल किए थे और प्लस टू में मैंने 96.4% मार्क्स प्राप्त किए, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से 5,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया गया। तो उससे मेरे को एक और मोटिवेशन मिली कि मैं और ज्यादा पढ़ूं।
वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बच्चों, नौउम्र बच्चियों और हमला खवातीन की गजाइत को बेहतर करने के लिए मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 सरकार के अहम इकदाम हैं। मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी के एक मजमून को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन स्कीमों से लाखों मुस्तफिदीन मुल्क भर में फैले हुए आंगनवाड़ी मराकज को एक बड़े नेटवर्क से मदद हासिल कर रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर 474 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया है। यह फैसला साल 2019 से लगातार 6 साल तक एक भी इंतखाब न लड़ने की बुनियाद पर किया गया है, जो कि एक जरूरी शर्त है। इस अमल के पहले मरहले में इंतखाबी कमीशन ने गुज़श्ता महीने 334 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया था। इस कदम के बाद गुज़श्ता 2 महीने के दौरान डीलिस्ट की गई रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों की तादाद 808 हो गई है। आसामी गुलकार और मारूफ फनकार जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में मौत हो गई। वो 52 बरस के थे। सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समंदर से बेहोशी की हालत में निकाला और मकामी अस्पताल में दाखिल कराया। ताहम इंतहाई निगहदाश्त के बावजूद डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। जुबीन गर्ग की अचानक मौत से उनके मद्दाह और सकाफती हल्के सकते में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
आसामी मौसीकी के मारूफ गुलकार और नौजवान दिलों की धड़कन जुबीन गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां वो आज अपने फन का मुजाहरा करने वाले थे। जुबीन गर्ग को साल 2006 में फिल्म गैंगस्टर के नगमे या अली से शोहरत मिली थी। वो हरफन मौला गुलकार थे जिन्होंने 40 जुबानों में 38,000 से ज्यादा नगमे रिकॉर्ड किए। उनका पहला एल्बम अनामिका साल 1992 में रिलीज हुआ था। मुल्क की शुमाल मशरकी रियासतों में जुबीन गर्ग सिर्फ एक गुलकार, नगमा निगार, मौसीकार, फिल्मसाज और अदाकार के तौर पर ही मारूफ नहीं थे, बल्कि सकाफत के आलमबरदार और इंसान दोस्त के तौर पर भी जाने जाते थे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि जुबीन गर्ग का जसद खाकी कल आसाम लाया जाएगा। आसाम के वजीर आला ने मजीद कहा कि रियासत ने आज अपना चहीता बेटा खो दिया है और मुस्तकबिल की नस्लें गर्ग को आसाम की सकाफत के मशाल बरदार के तौर पर याद रखेंगी। गुवाहाटी से अमीनुल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
जुनूबी भारत की रियासतों ने पीएम मेमेंटोज की ई नीलामी 2025 के लिए 100 से ज्यादा मुनफरिद अशिया पेश की हैं। सकाफत की वजारत ने एक बयान में बताया कि पीएम मेमेंटोज की ई नीलामी के 7वें एडिशन में जुनूबी भारत की अशिया का मुनफरिद कलेक्शन पेश किया जाएगा, जिसमें केरला से 15, कर्नाटक से 22, तमिलनाडु से 29, आंध्र प्रदेश से 27 और तेलंगाना से 7 अशिया शामिल होंगी। क्रिकेट में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के अपने फाइनल मैच में भारत ने ओमान के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 16 ओवर्स में 5 विकेट पर 153 रन बना लिए थे। ये मैच अबूजाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यूनान के अपने हमनसब किरियाकोस मित्सोताकिस से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए भारत यूनान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तहत अपने अजम को दोहराया। भारत ने दुनिया से दहशतगर्दी की सभी शक्लों से निपटने की कोशिशों में तेजी लाने और उन्हें मुस्तहकम करने की अपील की है। इंतखाबी कमीशन ने गुज़श्ता 6 साल के दौरान कोई इंतखाब न लड़ने पर 474 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया है। आसामी गुलकार जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इंतकाल हो गया है और एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में अबूजाबी में भारत और ओमान के दरमियान मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।